SBS हिंदी।
अक्सर आपने भारतीय या दूसरे देशों से बाहर पैसा कमाने गए लोगों के गलत वीजा या धोखाधड़ी का शिकार होकर फंस जाने के समाचार पढ़े या देखे होंगे और ये भी जरूर सोचा होगा कि उनका अब क्या होगा। अक्सर दूसरे की परेशानियों पर हम ज्यादा कुछ कर पाने में खुद को असमर्थ पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनमें वो जज्बा, हिम्मत और धैर्य है जो कि दुख के आंसुओं को खुशी में बदल सकता है। ऐसी ही एक शख्सियत से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं। नाम है रोशन रतूड़ी। रोशन भारत के उत्तराखंड के रहने वाले हैं और इन दिनों दुबई, यूएई में रहते हैं। इससे पहले वो ओमान जैसे देशों में भी रह चुके हैं। दरअसल रोशन यूएई में फंसे लोगों की उम्मीद का दूसरा नाम बन चुके हैं। ऐसा शायद ही कोई दिन होता है जब वो गलत वीजा पर आए लोगों को या फिर वीजा एजेंट्स की धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों की मदद ना कर रहे होते हैं। बड़ी बात यह है कि इस मदद में उन्हें मिलने वाली सफलता का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है। आइए सबसे पहले जानते हैं कैसे हुई ये शुरुआत।
2002 में मस्कट ओमान में गया तो वहाँ पे सर मैंने देखा कि विदेशों में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और जो इंडियन अथॉरिटीज भी है वो भी इतना ज्यादा सीरियसली काम नहीं करती है। तो मैं देखा कि कोई डेड बॉडी है, कोई पड़ा हुआ है, मां रो रही है, कोई किधर मतलब लोग तकलीफ में है तो कोई मदद करने को नहीं आता क्योंकि दूसरे देश में डर लगता है अब क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज हैं तो बहुत सारे रूल होते हैं। तो उस हिसाब से देखते मैंने देखा कि कोई आगे नहीं आता तो मैंने देखा कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए क्योंकि जीवन एक बार मिला है और ये मैं करता गया।
हमने उनसे जानना चाहा कि पहली बार जब उन्होंने किसी की मदद की तब क्या हुआ था।
सबसे पहले मैंने जो मदद की थी वो मस्कट में की थी। वहां पर हमारे उत्तराखंड के लोग फंसे थे और उनको बंदी बनाया हुआ था। कोई बिरयानी हाउस रेस्टोरेंट था तो उन्होंने मेरे पास आए तो मैंने वो रो रहे थे तो उनके घर से भी मेरे को ऐसी मैसेज आया, किसी ने कहा कि आप रोशन रतूड़ी से बात कीजिए। तो उसके लिए मेरी इंडियन एम्बेसी के साथ भी काफी बहस हुई थी इस बारे में कि आप लोग जो है इन लोगों को मजदूर समझते हो, लिबरल क्लास समझते हो और फिर इनको जो मदद नहीं करते। तो तब मैंने उन चार लोगों को निकाला था और उसके बाद फिर एक जो आपका क्या नाम इसका बैंगलोर के एक मिस्टर शेखर पुजारी थे तो उनकी डेड बॉडी को मैंने भेजा था। 18 दिन मुझे लगे थे तो वहां से मेरी प्रक्रिया शुरू हुई। तो आज मैंने काफी सारी डेड बॉडीज भी भेजी हैं और काफी 900 से ऊपर का आंकड़ा है। 931 लोगों को मैं सुरक्षित उस जिसमें कि बांग्लादेश भी है, भारत भी है और अपना जो है नेपाल भी है, केनिया भी है, फिलीपीन भी है।
रोशन बताते हैं कि यूएई में कानून काफी सख्त हैं। ये भी कारण है कि लोग चाहकर भी किसी की मदद को आगे नहीं आ पाते क्योंकि एक तो वो खुद भी प्रवासी होते हैं और दूसरा ये कि जिन लोगों की मदद की जानी है वो कहीं ना कहीं कानूनन गलत होते हैं। ऐसे में हमने रोशन से सवाल किया कि क्या उन्हें डर नहीं लगता।
इंसान इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है और अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा क्योंकि मैं कम से कम अगर मैं 100 लोगों के लिए अब मेरी जान भी जाती है तो मुझे गर्व महसूस होगा और मेरे माता पिता जो स्वर्गीय हैं उनको भी फक्र होगा कि हाँ हमारा बेटा कुछ अच्छा काम कर रहा है। और डरना क्या है सर, हमारे भगत सिंह ने तो देश को आजाद कराया, हम तो कुछ भी नहीं है। जबकि
अब हमने उनसे जानना चाहा कि किस तरह के मामले उनके सामने आते हैं और वो कैसे उनकी मदद कर पाते हैं। हालांकि उन्होंने हमें ये बताया कि वो केवल भारतीयों की ही मदद नहीं करते, वो तो बस लोगों की मुश्किलों को देखते हैं, फिर वो चाहे कोई भी हो, किसी भी देश का हो। उनके कुछ नंबर यूएई में सार्वजनिक हैं और मुसीबत में फंसे लोग किसी तरह उनसे संपर्क करते हैं और फिर उनकी मुश्किलें रोशन की हो जाती हैं।
सबसे ज्यादा मामले आते हैं जो हमारे जो इंडियन एजेंट हैं और पाकिस्तानी एजेंट हैं उसमें बांग्लादेशी एजेंट होते हैं, इनका एक बहुत बड़ा गिरोह होता है जो लोगों को विजिट वीजा, टूरिस्ट वीजा के नाम पर एम्प्लॉयमेंट वीजा बताकर उन लोगों को विदेशी धरती में लेके आते हैं और जब उनको एयरपोर्ट पे लेके आते हैं फिर वो लोग एयरपोर्ट में फंस जाते हैं। फिर उन इंडिया से दूसरा एजेंट पैसा लेता है और जब जिस कंट्री में वो आता है उस कंट्री में दूसरा एजेंट उसको एयरपोर्ट से लेके किसी मस्जिद पे, किसी चर्च पे, किसी मंदिर पे कहीं या मस्जिद के पास छोड़ देता है क्योंकि वहां से उनको जो है खाना मिल जाता है, रहने का एक जरिया मिल जाता है, लेकिन हालत बहुत बुरी होती है। तब वो इस हालत में जब मेरा नंबर, मेरा पेज है सार्वजनिक है तो उस नंबर पे कॉन्टेक्ट करते हैं, फिर मैं उनसे मिलता हूँ, उनकी प्रॉब्लम पूछता हूँ, तब मैं उनको अपने घर लाता हूँ और उनके लिए प्रक्रिया शुरू करता हूँ, जिससे पुलिस से मदद लेता हूँ, उसके बाद एमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाता हूँ, फिर उनकी पूरी खोजबीन करने के बाद उनके लिए आउट पास करता हूँ, आउट पास के पैसे पड़ते हैं, फिर उनका टिकट बनाता हूँ। और अलग अलग स्टेट के, कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट के अपने अपने रूल है, अलग अलग प्रक्रिया से उसी हिसाब से फिर मैं उनका काम करता हूँ, अपने घर पे लाता हूँ, चाहे उसमें 45 दिन लगे, 20 दिन लगे, उनके लिए घर लेता हूँ, खाना देता हूँ, जो भी रिक्वायरमेंट, जितनी भी नीडफुल जो जरूरत की चीजें होती है पूरी करने के बाद मैं उनके परिवार के पास उनका टिकट बना के सकुशल सुरक्षित यहाँ से मान लीजिए कलकत्ता जाना चाहता है, मिजोरम जाना चाहता है, उत्तराखंड जाना चाहता है या दिल्ली जाना चाहता है, तो दिल्ली एयरपोर्ट से भी आगे तक के भी पैसे देता हूँ उसको पूछ के कि दिल्ली एयरपोर्ट से तेरा घर कितनी दूर पड़ता है।
अब हमने उनसे जानना चाहा कि वो इतने लोगों की मदद के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं। उन्होंने हमें बताया कि वो एक क्लीनिंग कंपनी चलाते हैं। तो हमने सवाल किया कि फिर वो लोगों की मदद के लिए समय कैसे निकालते हैं और क्या घर परिवार में लोग उन्हें टोकते नहीं।
मैं ब्रह्मचारी हूँ सर, मेरा जीवन जो है लोगों के लिए है, और जिसमें कि मैं दारू बीड़ी चाय सिगरेट तम्बाकू किसी चीज का सेवन नहीं करता हूँ। दूसरी बात, जो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में 120 लोग काम करते हैं और जो मेरी उससे इनकम आती है मैं उस इनकम को लोगों को देना चाहता हूँ। जो किसी का जीवन है वो बड़ा अनमोल होता है, वो किसी माँ का बेटा है, एक आदमी को सुरक्षित उसके घर पहुंचाने का मतलब है उसके पीछे 10 या 15 लोगों की जीवन की खुशियां उनके वापस भेजना।
हमारा अगला सवाल था कि क्या किसी तरह प्रशासन भी उनकी मदद करता है, और ये भी कि लोगों को बचाकर घर वापस भेजने की जो वीडियो वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं उसके पीछे उनका क्या मकसद है।
आपने मेरी वीडियो देखी, फोटो देखी, सबसे पहले तो ये एक ऐसा चीज होता है कि पब्लिक के बीच में आना जरूरी है, लोगों में अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है, दैट इज ऑल्सो रिस्की फॉर मी सर, वो भी मेरे लिए रिस्की है, लेकिन मुझे अवेयरनेस नहीं लाऊंगा आज मैं, अगर वो चीज नहीं करता तो सर आप तक भी नहीं पहुंच पाता था सर। और अथॉरिटी की जो बात है यहाँ पे, तो सर देखो जो कंट्री के रूल है बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत सख्त है, बहुत सख्त रूल है, और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है और आपका पुलिस डिपार्टमेंट है, जेल डिपार्टमेंट है, तो जब भी वो देखते हैं आदमी अच्छा काम करता तो मुझे हर तरीके से बोलते हैं, पर वो ये बोलते हैं कि कोई भी काम करना है, कोई लोग भागे हुए हैं, आप इनको क्यों निकालते, हो सकता है कोई कंपनी से भाग रखा होगा, आपने इतने लोगों को निकाल दिया, तो भी काफी सारे सवाल जवाब करते, लेकिन क्या करें ये जुनून है।
लोगों के दुख हमसे साझा करते करते रोशन भावुक हो गए। वो कहते हैं कि वो इंसान है, ऐसे में लोगों के दुख देखकर वो चुप कैसे रह सकते हैं।
अपने लिए जीव बस, अपना पेट भरता रहूं बस, यही है जिंदगी। आप मुझे बताइए क्या हमारा कोई फर्ज नहीं है हम लोगों के लिए मदद करें। मैं तो रो रहा हूं, मेरे को बहुत तकलीफ होती है सर, क्योंकि मेरे पास ऐसे केस हैं जो आप सुनेंगे तो आप रोने लग जाएंगे सर।
आपके विचार हमें बताए, SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।